The Lord, aye. Joy to him. So, we're nearly at the end of the sutta. We've just got two more contemplations to go.
और दो जो चिंतन है वो सिर्फ बचे हुए हैं अभी.
And of course those contemplations are under the heading of Dhammanupassana.
और यह जो दो चिंतन है अभी धर्मानुपासना के अंतर्गत आते हैं.
So I think it's worth just reflecting a little bit on the sequence that we've got.
तो यानी जो कुछ भी यानी हमने ये जो सूचियां देखी है उसके बारे में देखेंगे.
It clearly is building up.
यानी आहिस्ता आहिस्ता वो यानी बनती गई है.
But what's very interesting is that we've got several different versions of the discourse.
यानी ये जो पूरा प्रवचन है यानी अलग अलग चीजों को हमने देखा है इसमें.
Several different versions of it.
अरे उसकी कई आवृत्तियां हैं उसकी.
So we've got two in Pali.
दो पाली में है.
We've got two in Sanskrit. They're fragments, but we've got two in Sanskrit.
दो संस्कृत में है.
And we've got two in Chinese.
और दो चाइनीज में है.
As far as I know, there's also a Tibetan version, but that's not mentioned in the source that I'm reading.
यानी जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उसमें मैंने देखा नहीं, लेकिन एक तिब्बत में भी ऐसे कहा जाता है.
So you've got these 6, 7, maybe more versions of the same talk by the Buddha.
यानी एक ही बुद्ध का ये जो प्रवचन है जिसके 6 या 7 ऐसे अलग-अलग आवृत्तियां दिखती है.
And all of them are slightly different.
वो सभी के सभी थोड़ी थोड़ी उसमें कुछ अंतर है.
Even in the Pali canon, the two versions are slightly different from each other.
और जो पाली वाङ्मय है उसमें भले ये दो आवृत्तियां हैं लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अंतर है.
And the Chinese versions have some quite different material from the Pali versions.
और जो चाइनीज जो आवृत्तियां हैं उसमें यानी पाली वाङ्मय में जो कुछ भी मिला है उसे कुछ अलग ही उसमें मिलता है.
So what's interesting is what they all have in common.
लेकिन उसमें रोचक बात यह है कि अरे कुछ बातें इसमें एक जैसी है, कॉमन है.
They've got the same structure of the 4 Satipatthana.
अरे 4 सतिपट्ठान की जो रचना जो है वो एक जैसी है.
And the material they've got under each Satipatthana, some of it's in common between the different texts.
और सतिपट्ठान की ये जो 4 बातें हैं इसमें जो कुछ भी सूची आई हुई है वो थोड़ा बहुत एक जैसी है वो.
So you can imagine the Buddha said something.
तो हम इन्हें कल्पना करते हैं कि बुद्ध ने कुछ कहा.
That was remembered by different groups of monks.
और जो भिक्षुओं के जो अलग अलग जो गुट थे उन्होंने उसे स्मरण में रखा.
And they passed it on to their disciples and so on.
तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनके पास उसे हस्तांतरित किया और इस तरह से आगे गए.
But in the course of time, some people began to add things in.
लेकिन जैसे कुछ समय बीत गया तो कुछ लोगों ने उसमें कुछ चीजें जो है वो
So they thought, when the Buddha was talking about Dhammanupassana, he must have meant the Four Noble Truths.
जब बुद्ध धर्मानुपासना के बारे में बात करते हैं, तो वो 4 आर्य सत्य के बारे में कहेंगे.
Of course, he meant that.
यानी उन्होंने ऐसे किया है.
That's what people thought.
और ऐसा लोग सोचते हैं.
But in another tradition, they didn't think that.
लेकिन जो दूसरी परंपरा है, वो ऐसा नहीं सोचती है.
So half have got the Four Noble Truths in. Half haven't got the Four Noble Truths.
और आधे जो लोग हैं उन्होंने 4 आर्य सत्य को इसमें शामिल किया है, आधे लोगों ने नहीं किया है.
So what we can say is what they do have in common is probably what the Buddha originally said.
तो उनके अंदर जो एक जैसी अगर कोई बात है तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि बुद्ध ने जो तब बात कही थी.
You see the point.
आपको यह मुद्दा समझ में आया होगा.
You know, you all go back from here.
यानी हम यहाँ से लौट जाएंगे वापस.
No, I've done this already. You know what I mean.
ये मैंने पहले ही कहा है, आप जानते हो क्या.
You know what I mean. So, what do they have in common?
तो उनके बीच यानी एक जैसी बात क्या है?
Well, under Dhammanupassana, they have the hindrances and the bodhyangas in common.
तो उनके अंदर जो एक जैसी बात वो ये थी धर्मानुपासना में और वो निवरण और बोध्यांग थे.
Those are the two elements that are common between all the texts.
ये जो दो अंग है इसके ये सभी आवृत्तियों में दिखाई देते हैं.
So the other bits are added in.
और दूसरी जो बात है इसमें इन्हें शामिल की गई है.
That doesn't mean they're wrong.
इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है.
It doesn't mean they're not valuable.
ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए इसका कोई मूल्य नहीं था.
It's just that they're probably not what the Buddha originally said in this discourse.
इस संदर्भ में बुद्ध ने ऐसे ही कहा था इसके बारे में उसके बारे में वो इतने निश्चित नहीं थे.
It's a bit like, well, I'm giving a talk now.
ऐसा ही जैसे कि मैं अभी प्रवचन दे रहा हूँ.
I'm basing my talks on what Bhante said.
मेरा जो प्रवचन है भंते जी ने क्या कहा उस पर आधारित है.
But I'm adding to it.
लेकिन मैंने कुछ बातें इसमें शामिल की है.
From Bhante's own sources.
भंते के अपने कुछ स्रोत है.
But you know, I'm not saying exactly what Bhante said.
लेकिन बंदे जी ने जो कहा है मैं बिल्कुल वैसे के वैसा नहीं कह रहा हूँ.
So do you see the point that what you've got in this sutta is probably not exactly what the Buddha said?
और ये सूत्र में जो कुछ भी बातें आई हुई है इन्हें हो सकता है कि बुद्ध ने ऐसी की ऐसी नहीं कही होगी.
He said these things, but not in this particular talk.
उन्होंने इनका जिक्र किया है कहीं लेकिन इसी प्रवचन के दरमियान किया होगा ऐसा नहीं है.
For those of you who know computers, cut and paste job was done.
Computer के बारे में हमें पता है कि यानी cut paste किया जाता है वहाँ पर.
हाँ, cut paste. हाँ, हिंदी शब्द. So I just wanted to say that because you know partly it enables us to understand what we've got in a text like this.
यानी ये सूत्र में हम यानी क्या पाने वाले इसके बारे में कुछ बात की है.
Probably what the Buddha said was much simpler than the text that we've now got.
यानी ये जो सूत्र अभी हमारे सामने है उस हो सकता है कि बुद्ध ने इसे बहुत ही यानी ज्यादा सरलता से इसे बताया होगा.
And of course it's arranged so that it can be easily remembered.
यानी कोई भी आसानी से इसे स्मरण कर सकता है इस तरह से उसको यानी बनाया होगा.
So you get that chorus coming back again and again and again.
तो इसलिए हम ये कुछ बातों के समूह देखते हैं कि जो बार 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 आ रहे हैं.
But it doesn't necessarily fit if you take it like that.
और ये उसको ऐसे ही अगर हम देखना चाहेंगे तो ये फिट नहीं बैठता है वहां पर. जैसा लगी है ये
क्रिएटिव हिंदी. Up creative Hindi talk ta hoon. So today we come to the Bodhyangas.
To aaj hum Bodhyango ki taraf.
So these are what you need in order to gain Bodhi.
यानी ये वो कौन सी बातें हैं जो हमें बोधि तक ले जाती है.
बोधि arises in dependence on conditions.
बोधि जो है वो जो परिस्थिति है उससे उभर आती है.
This is important to realize.
यानी ये समझना बहुत ही महत्व की बात है.
It doesn't just come out of the sky.
यानी वो इस तरह आकाश से एकदम अचानक गिर नहीं जाती.
It comes as a result of systematic development.
तो यह जो क्या बोलते हैं परिणाम कारक जो हम कार्य करते हैं उससे यह उभर आती है.
It's a bit like the rice seeds, rice plants.
तो जैसे कि यानी जो भात की जो पौधे होते हैं.
They don't just suddenly appear.
वो एकदम अचानक कैसे निर्माण नहीं होते.
The farmer has to prepare the ground, plant the seed, let the water in, and so on.
तो जो काश्तकार होते हैं उन्हें पहले उसे जमीन को क्या बोलते हैं जोतना पड़ता है और फिर उसकी साफ सफाई करनी पड़ती है और फिर बीज बोने पड़ते हैं और पानी डालना पड़ता है.
And then the seed comes up and the plant develops.
और फिर ये पौधे तैयार होते हैं.
So the Bodhyangas are the conditions that are necessary for Bodhi to appear.
और बोधि निर्माण होने के लिए अवतीर्ण होने के लिए हमें इस तरह की परिस्थिति को बनाना पड़ता है.
You could say that even the opposite of the hindrances.
इसके निवारणों के बारे में भी हम कह सकते हैं इसके विरोध में.
The way in which they're put in the sutta is that you get rid of the hindrances and develop the Bodhyangas.
जैसे सूत्र में कहा गया है कि हमने जो निवारण है उसको निकाल देना है और बोधि के लिए प्रयास करने हैं
बोध्यांग
के लिए
You could even think that you drive out the hindrances by developing the bodhyangas.
और दूसरे शब्द में ऐसे कह सकता है कि इन्हें बोध्यांगों को निर्माण करते समय इनको हम निवरणों को निकाल लेते हैं वहां से.
So this is quite important for us.
ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है.
We are developing the bodhyangas.
हम बोध्यांगों को विकसित कर रहे हैं.
And probably every one of them you will have some experience of.
हम सभी में सभी को इसका कुछ न कुछ अनुभव है.
And to the extent that you'd get at all concentrated, to the extent that you really do begin to understand the Dhamma, these bodhyangas are present.
जब हम बहुत ही सावधानी से प्रवचन को सुनते हैं तो कुछ बोध्यांग जो है वो तैयार होने लगते हैं, निर्माण होते हैं.
So while I'm talking about them, well, recognize them in yourself.
जब मैं कुछ कहता हूँ तो आप अपने आप को जानते हैं कुछ.
And well, think how you can develop them more.
और हम सोचते हैं कि अभी और मैं कैसे विकसित हो सकता हूँ.
And as I say, they will drive out the nivarana.
और इसी वजह से जो निवारण है वो वहां से चले जाते हैं.
You could say that you have to get the nivaranas out of the way in order for the bodhyangas to come.
तो हम निवारणों को इस तरह से बाहर निकाल देते हैं जिससे बोध्यांग जो है वो उभर आते हैं.
But at the same time you could also say that if you make the bodhyangas come, the nivarana will go away.
दूसरे अर्थ से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब बोध्यांग निर्माण होने लगते हैं तो निवारण चले जाते हैं.
The two are opposed to each other.
वो एक दूसरे को विरोध करते हैं एक तरह से.
Where one is present, the other cannot be present.
जब एक वहां उपस्थित रहता है तो दूसरा वहां पर उपस्थित नहीं रहता है.
So it seems as if in the original sutta, probably what the Buddha said was, get rid of the hindrances, develop the bodhyangas.
इसीलिए हो सकता है कि बुद्ध ने यह कहा होगा कि हिंड्रेंसेस को जो निवारण है उसे जाने दीजिए और बोध्यांग का विकास कीजिए.
So in a way, what he said was very simple.
और ऐसे देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से ये बात बताई है.
We've already seen yesterday that the other elements are very, very useful and inspiring.
कल हमने देखा है कि इसके लिए दूसरे अन्य जो पहलू है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रेरणादायी है.
But in the end, we just have to get on with getting rid of the hindrances, developing the bodhyangas.
और इन्हें इतना भी अच्छा है कि निवारणों को जाने दीजिए और बोध्यांगों को उभरने दीजिए.
So, let's get on with developing the bodhyangas.
तो अभी बोध्यांग कैसे विकसित करते हैं?
So the bodhyangas begin, of course, with sati.
और बोध्यांग जो है वह सती से आते हैं.
The spiritual life begins with awareness.
और धम्म जीवन की शुरुआत जागृति से होती है.
You know, suddenly you realize that you have to make your life more.
यानी हमें ऐसे लगने लगता है कि जीवन में कुछ और चाहिए मुझे.
You know that your life is not going in the right direction.
हमें ऐसे पता चलता है कि मेरा जो जीवन है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है.
And you get a feeling, well, I must go further.
और फिर हमें ऐसे अनुभव होने लगता है कि नहीं, मुझे और आगे जाना चाहिए.
You wake up to the fact that life as you're living it is not satisfactory.
यानी हम इससे अवगत हो जाते हैं अपने आप में कि जो कुछ भी जीवन में जी रहा हूँ वो इतना समाधानकारक नहीं है.
So you could say that some self-awareness arises.
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्व जागृति है वो निर्माण होती है.
You realize that a good life depends on you.
और हमें ये मालूम हो जाता है, हम ये जान जाते हैं कि अच्छा जीवन जो है वो मेरे ऊपर ही निर्भर है.
You take moral responsibility.
हम जो नैतिकता की जिम्मेदारी उठाते हैं.
Because morality means mindfulness.
कि नीतिमत्ता जो है वही जागृति है.
You can't be moral unless you're mindful.
अगर हम जागरूक नहीं है तो हम नीतिमान नहीं हो सकते.
Because once you become aware of what you're doing, you see that you're causing harm.
तो जब हम जानते हैं कि मैं किस तरह का कार्य कर रहा हूँ तो हम ये जानते हैं कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है.
You begin to see that your actions are what create your own and other people's suffering.
हम ये जानते हैं कि मेरी कृति मेरे लिए और औरों के लिए कैसे नुकसानदायी होती है.
So we begin with smriti, sati.
तो इसकी शुरुआत जो है वो स्मृति से होती है.
And sati comes again and again, doesn't it, in new and deeper forms.
और ये जो सती है वो हमेशा नई होती है और गहरी होती है, नए रूप में होती है.
We come to points when we break through to a deeper level of mindfulness.
हम इसको देखा था कि जब जागृति का जो जो गहराई है वहां पर देख सकते हैं.
That's probably happened to some of you even on this retreat.
यानी हम में से कुछ लोगों के साथ इस शिविर में भी ये बात हुई होगी.
You've realized more fully and deeply through your experience what this life is.
यानी हमने अपने अनुभवों से ये जाना होगा कि सचमुच जीवन क्या है.
So that the whole spiritual life begins with awareness.
तो समूचा जो धर्म जीवन है वह जागृति से संबंधित है.
And you can tell when people come in contact with the Dhamma.
तो हम ये कह सकते हैं कि जब लोग धम्म के संपर्क में आते हैं.
You know, a lot of people come to classes.
बहुत सारे लोग यानी हमारे धम्म वर्गों को आते हैं.
But with some of them, you can see the light has gone on.
और हम कुछ लोगों को देख सकते हैं कि जैसे वो प्रकाशित हो रहे हैं.
The light like that.
हाँ, ये जो प्रकाश है, ये उनके ऊपर गिर रहा है प्रकाश.
लाइट, द लाइट गोज ऑन.
और यानी हाँ, दीवार बैठला है.
सो many people they just you know, they come, they've got some devotion to Baba Saheb, they've got some feeling for the Buddha.
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बाबा साहब के प्रति कुछ भक्ति होती है और बुद्ध के बारे में कुछ श्रद्धा होती है.
But they don't really have some sense of the Dhamma.
लेकिन उनको धम्म का जो सही अर्थ है वो नहीं होता है, पता नहीं होता है.
And then you can see with some, a light goes on.
और हम देखते हैं कि वहाँ कुछ तो भी अभी शुरू हो गया है.
And you probably remember yourself, the light going on.
और हम अपने स्वयं के बारे में ये देख सकते हैं कि कुछ तो भी हो रहा है.
Unfortunately, it goes off again.
दुर्दैव की बात है, कभी कभी ये फिर से बत्ती बुझ जाती है.
Load shedding is there.
Load shedding चलते रहता है.
And sometimes it's what they call it, brown out. Very low, very dim light.
हाँ, dim, कभी कभी dim light होती है.
Just a tiny little bit of light there.
एकदम छोटी सी.
But the whole spiritual life comes from mindfulness.
तो पूरा समूचा जो हमारा धर्म जीवन है वह जागृति से ही आता है.
And we need to develop mindfulness as the basis for the whole life.
यानी हमारे पूरे जीवन में हमने इस ये जागृति को बढ़ावा देना चाहिए.
And we've seen that the best way to build up your awareness, build up your mindfulness, is by being mindful of your body.
और यह सबसे अच्छा तरीका यह है जागृति को बढ़ाने का, और अपने शरीर वो ये है कि अपने शरीर के प्रति जागृत हो.
I hope you've got some definite feeling for that during these days.
इन दिनों में आपने जरूर इसका कुछ अनुभव लिया होगा.
Through being mindful of your body, your whole awareness gets bigger.
जब हम अपने शरीर के प्रति जागृत हो जाते हैं तो जो पूरी जागृति है वो आहिस्ता आहिस्ता यानी विस्तारित होने लगती है.
So what happens when you begin to be mindful?
तो जब हम जागरूक होते हैं तो क्या होता है?
You stop reacting so much.
तो जो प्रतिक्रिया देने का हम रोकते हैं अपने आप को.
To begin with, you realize after you've reacted that you've reacted.
बहुत सारी बार ये होता है कि हम प्रतिक्रिया देने के बाद जानते हैं कि मैंने प्रतिक्रिया दी है.
Then while you're reacting, you notice you're reacting.
और
जब
तो जब रिएक्ट होने को ऐसी मनस्थिति तैयार हो गई रिएक्ट होने जैसी, तभी हम जानते हैं कि अभी मेरा मन रिएक्ट प्रतिक्रिया देना चाहता है.
एंड देन बिफोर यू रिएक्ट यू नोटिस यू आर गोइंग टू रिएक्ट.
तो यानी प्रतिक्रिया देने से पहले ही हम जान जाते हैं कि यानी प्रतिक्रिया निर्माण प्रतिक्रिया देने की इच्छा हो रही है.
You may still react.
अभी भी हम प्रतिक्रियात्मक हो सकते हैं.
That's what happens, isn't it, sometimes?
कभी कभी ऐसे होता है.
You think, I'm getting angry.
हम ऐसे सोचते हैं कि अरे मुझे गुस्सा आ रहा है.
I'm going to say something harsh.
मैं कुछ अभी कठोर बोलने जा रहा हूँ.
Out it comes.
और तुरंत हो जाता है.
You say, yeah, I knew I was going to do that.
और ये मुझे पता है कि ऐसे होते रहता है.
So, and then you are aware that you're in a reactive state.
अरे हम ये जानते हैं कि मैं प्रतिक्रियात्मक मनस्थिति में हूँ.
And you shut your mouth.
और हम अपने मुंह को दबा देते हैं.
And you put sellotape over your mouth.
और हम ये सेलोटेप लगा देते हैं मुंह के ऊपर.
So in that way, you gradually become more and more aware.
तो ऐसा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा जागरूक होने लगते हैं.
And of course, the same goes for craving.
और यह तृष्णा के साथ भी ऐसे होता है.
Awareness makes you aware of your reactions.
हम जो कुछ भी यानी हमारी प्रतिक्रियाएं हैं इसके बारे में हम जागरूक होने लगते हैं.
And then you gradually stop them.
और हम यानी उसको आहिस्ता आहिस्ता रोक देते हैं.
They may still rise in you, but you don't let them come out.
यानी वो अभी भी हमारे अंदर वो पनपती है लेकिन हम उसे अभिव्यक्त नहीं करते हैं.
So in other words, with Smriti, you begin to overcome Kama Chanda and Patiga or Dvesh.
और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि स्मृति जो है वो हमें काम छंद या जो पति है या द्वेष उसे उसके ऊपर कार्य करती है रोकती है उसे.
At the very least you become aware that they're there.
यानी बहुत कम बार हम जागरूक होते हैं कि वो वहां है.
So
कम से कम हम जागरूक
हो जाते हैं. हाँ. So Smriti is the basis for the whole spiritual life.
तो स्मृति जो है वो पूरे जीवन का आधार है.
Properly speaking, it means simply awareness of what is there.
यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ क्या है इसके बारे में जागरूक होगा.
It means awareness of what's there in you, aware of what's outside you.
यानी हमारे अंदर क्या है और हमारे आजू बाजू में क्या है इसके बारे में जागरूक होना.
And what begins to happen is that, yes, you begin to discriminate what's happening.
तो क्या होता है कि हम जो हमारे साथ हो रहा है उसको हम अलग अलग करके देखने लगते हैं.
You begin to see, well, that's an unskillful action.
और हम ये देखते हैं कि हाँ ये अकुशल कृति है.
That is low.
और ये लोभ है.
That's द्वेष.
ये द्वेष है.
That's moha.
ये मोहा है.
You begin to see what is going on in ethical terms.
हम उसे ऐसे देखने लगते हैं, यानी नैतिकता के अर्थ से इसे देखने लगते हैं.
So this is the second step.
यह जो ये दूसरी पारी है.
This is the second anga.
यह दूसरा अंग है.
This is dhamma vichaya.
और यह धम्म विचय है.
Dhamma vichaya is mindfulness, but mindfulness applied intelligently.
यह धम्म विचय यह जागृति है लेकिन यानी विवेक पूर्ण कृति कैसी करनी इसके संदर्भ में.
You're not just aware of what's happening.
हम केवल ये जानते नहीं है कि क्या हो रहा है.
You're able to recognize it.
हम उसे पहचानने के लिए सक्षम हो जाते हैं.
And you're able to say, is this skillful? Is it unskillful?
और हम इसके लिए भी सक्षम हो जाते हैं कि ये कुशल है या अकुशल है.
We've seen this, of course, in the Satipatthanas.
इसे सतिपट्ठान में हमने इसे देखा है पहले.
In the Vedanupassana, we're discriminating whether the Vedanas are to do with the wheel or to do with the spiral.
Vedanupassana में हमने ये देखा है कि ये जो वेदनाएं हैं ये क्या भवचक्र की ओर ले जा रही है या ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग की ओर.
Under Chittanupassana, we see whether the mental states are skillful or unskillful.
और चित्तानुपस्सना में हमने ये देखा है कि ये जो भावना है वो कुशल है या अकुशल है.
And under Dhammanupassana, we see that the hindrances are there or the Bodhyangas.
और धम्मानुपस्सना में हम देख रहे हैं कि क्या वहाँ निवरण है या बोध्यांग है.
So this is a very very important development out of sati or smriti.
और ये बहुत ही महत्व की ऐसी बात हमारे से होती है सती की वजह से.
If we're mindful to a sufficiently strong degree, we begin to discriminate what's going on.
यानी क्या हो रहा है इसको यानी अलग अलग करके देखने की जो सती है वो विकसित होती है हमारे बीच में.
We see what is skillful for progress on the path.
यानी मार्ग पर हम यानी कितने कुशलता से मार्गक्रमण कर रहे हैं ये हम देख सकते हैं.
So you know this faculty.
यानी ये बात हमें पता है.
You've experienced this sort of aspect of mindfulness.
यानी ये जो जागृति का यह जो अंग है इसे हम कुछ अनुभव किए हैं.
In your own experience, you've said, no, that's unskillful.
ये हमारा अपना अनुभव है. हम देखते हैं कि हाँ ये अकुशल है.
That's skillful.
और ये कुशल है.
That is dhamma vichaya.
और ये धम्म विचय.
So everybody has this faculty already developed to some degree.
तो हमें से यानी हमें ये जो अंग है इसे कुछ हद तक विकसित किया हुआ है.
But we need to develop it much more deeply.
लेकिन इसे हमने और गहराई से विकसित करना है.
And we need to have it much sharper and finer.
और उसको हमने और तेज करना है और शुद्ध करना है.
In most of our cases, it's still like a very blunt knife.
ये बहुत सारी बार ऐसे होता है, ये जो खुला चाकू होता है इस तरह से.
And we often don't even remember to use it.
और हमें ये अक्सर पता नहीं होता है कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए.
But as we get more and more mindful, Dhamma Vichaya gets sharper, clearer, and we're quicker to use it.
और जैसे जैसे हम धम्म के बारे में हमें स्पष्टता आने लगती है, तो हम धम्म विचय का और ही अच्छी तरह से और क्या बोलते हैं, सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं.
There's a famous sutta in which the Buddha talks about his own early experience.
और इसके बारे में एक सूत्र है जो बुद्ध ने कहा है कि उनकी शुरुआत के दिनों में क्या हुआ था.
It's called the two kinds of thought sutta, the Dvaya Vitakka sutta.
Dvaya.
The two kinds of thought.
दो प्रकार के विचार.
So the Buddha says, well, I thought to myself, why don't I sort out those thoughts that lead to suffering from those thoughts that lead to happiness?
Why don't I?
Yeah.
तो मैं ऐसा क्यों नहीं सोचता हूँ कि ये जो विचार है ये मुझे दुख की ओर ले जा रहे हैं, और ये जो विचार है ये मुझे सुख की ओर ले जाएंगे.
So that's what he did.
और फिर उन्होंने ऐसे किया.
And from that he developed the jhanas.
और फिर उन्होंने जो ध्यान है उसको और विकसित किया.
And from that he developed vipassana.
और उसी से उन्होंने विपस्सना को विकसित किया.
So this was the way in which the Buddha saw things.
और बुद्ध ने जो देखा उसको ऐसे उन्होंने रखा है.
He used dhamma vichaya.
उन्होंने धम्म विचय उन्होंने बताया.
Now of course we have some help in dhamma vichaya.
धम्म विचय में हमें निश्चित ही कुछ सहायता होती है.
We've got the help of the Dhamma itself.
धम्म की ओर से हमें कुछ सहायता होती है.
So Dhamma Vichaya means the looking at mental states as they arise.
जो कुछ भी मनस्थिति हमारी उत्पन्न हो रही है उसे देखना.
But looking at them in the light of the Dhamma.
लेकिन उन्हें धम्म के प्रकाश में देखना है.
So for instance, we're talking about Dhamma Vichaya.
तो इसलिए इसे धम्म विचय कहा गया है.
This is a mental state that probably you've all experienced. Well, certainly you've all experienced.
ये इस प्रकार की मनस्थिति है, ये जानना है, हमारा अपना अनुभव है.
But looking at it in the Bodhyangas makes you more conscious of it, makes you better able to recognize it and develop it.
इसको और अच्छी तरह से जानना और पहचानना कि हाँ ये बात वो है.
Dhamma Vichaya is a very, very important faculty in taking ourselves up towards Bodhi.
तो धम्म विचार ये बहुत ही महत्व की बात है कि हमें और आगे जाने के लिए सहायता करने के लिए.
When you start to discriminate mental states, well, you see those that are desirable or useful and those that are not.
और जब हम यह धम्म विचार जब शुरू होता है तो हम इस तरह देखने लगते हैं कि यह तृष्णा है जो
यू सी दोज दैट आर यूजफुल हेल्पफुल एंड दोज दैट आर नॉट हेल्पफुल.
तो ये कुछ बातें हैं जो हमें उपयोगी है और ये उपयोगी नहीं है, ऐसा हम अलग अलग करके देखते हैं.
सो ऑफ कोर्स यू नेचुरली स्टार्ट टू मेक एन एफर्ट टू डेवलप दोज दैट आर यूजफुल एंड गेट रिड ऑफ दोज दैट आर नॉट.
तो बहुत ही नैसर्गिकता से जो हमारे फायदे की बातें हैं, जो उपयोगी है उसकी ओर हम जाना शुरू करते हैं, और जो उपयोगी नहीं है उसे निकाल देते हैं.
So what starts to happen out of Dhamma Vichaya is Virya emerges.
तो धम्म विचय होने से क्या होता है कि फिर वीर्य आता है.
So Virya is the effort to get rid of unskillful mental states.
तो वीर्य ये है जो अकुशल मनोअवस्था है उसे निकाल लेने की वो शक्ति है.
And to prevent unskillful states from arising.
और जो अकुशल मनोअवस्था है उसे फिर से निर्माण न हो उसे रोकने की अवस्था है.
In other words, it's the attempt to get rid of the hindrances once they've arisen.
यानी जो निवारण है उसको हमने निकाल दिया है.
And to keep them out once you've got rid of them.
एक बार हमने उसे निकाल दिया फिर अंदर न आए इसके लिए वहीं पे यानी अंदर नहीं आए इसके लिए कोशिश कर रहे हैं.
And it's the attempt to bring into being the bodhyangas.
तो इसी से यानी बोधांग और विकसित होते हैं.
And to keep them in being once they're there.
और वो वहां रहे इसके लिए वो बने रहते हैं.
These are the four right efforts.
ये यानी जो चार जो मुख्य प्रयास है वो है यहाँ पर
पदार्थ. So avidya naturally comes out of dhamma vichaya.
Dhamma vichaya ki wajah se virya jo hai wo nisargatah usse hi ubhar aata hai.
Dhamma vichaya naturally comes out of sati.
Aur dhamma vichaya jo hai ye sati ki wajah se aata hai.
If you're really aware, you begin to discriminate what is skillful from what is unskillful.
Jab hum sachmuch jagrut ho jate hain to hum dekhte hain ki kya kushal hai aur kya akushal hai.
If you're really discriminating what is skillful from unskillful, you try to get rid of the unskillful and develop the skillful.
जब हम सचमुच इन चीजों को अलग अलग करने लगते हैं कुशल और अकुशल को तो कुशल का विकास शुरू कर देते हैं और अकुशल को निकाल देते हैं वहां से.
Traditionally it's said that when you develop dhamma vichaya you get rid of doubt vichikitsa.
तो यानी परंपरा से ऐसे परंपरा में ऐसे कहा गया है कि जब धम्म विचय हमारे अंदर निर्माण होता है तो शंकाएं नहीं होती है विचिकित्सा को हम निकाल देते हैं.
इफ यू लाइक डाउट इज द इनएबिलिटी टू डिसाइड व्हाट इज कुशल and what is akushala. Vichikitsa.
Vichikitsa ye aisi baat hai ki kushal aur akushal jo hai usme wo alag alag nahi kar sakte use.
You can't decide is it skillful or is it unskillful.
And hum ye nishchit nahi kar pate hai ki ye kushal hai ya akushal hai.
So you remain in a state of doubt.
तो ये ऐसी स्थिति है ये शंकाओं की स्थिति है ये.
So once you have vichikitsa dhamma vichaya you know no this is unskillful this is skillful.
जब हम धम्म विचय में आते हैं तो हम ये बराबर जानते हैं कि ये कुशल है और ये अकुशल है.
And of course virya is the opposite of tinamidha.
और वीर्य जो है ये थीन मिध है उसकी विरोधी भावना है.
In tinamidha is a state where you make no effort.
यानी थीन मिध ये ऐसी अवस्था है जहां हम कुछ प्रयास नहीं करते हैं.
It needn't even be sleepy exactly.
वो एक तरह से यानी कहते सुस्त ऐसी अवस्था है सोने की जैसी अवस्था है.
Sometimes when you're in tinamidha you actually feel okay.
यानी अक्सर ऐसे होता है जब हम थीन मिध की अवस्था में होते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है.
And you're just drifting happily from one thought to another.
तो हम आहिस्ता आहिस्ता एक विचार से दूसरी विचार की ओर बहने लगते हैं.
But there's no effort.
लेकिन कुछ प्रयास नहीं होते.
So virya is the opposite of tinamidha.
तो वीरिया जो है ये थीन मिध की विरोधी भावना है.
So we've got this sequence sati becomes vichikitsa. Becomes sati becomes dhammavichaya.
तो sati की वजह से dhammavichaya आता है.
Dhammavichaya becomes virya.
और dhammavichaya की वजह से virya आता है.
So far the accent is all on the effort that you're making.
तो ये ऐसा है कि जो कुछ भी हम प्रयास कर रहे हैं.
But you now begin to have some sort of result.
तो अभी यानी कुछ हम परिणामों की तरफ आते हैं.
You get pasaddhi.
तो अभी हम pasaddhi पाते हैं.
Prashrabdhi in Sanskrit.
संस्कृत में इसे prashrabdhi कहा गया है.
So as a result of your efforts, yes, there's a fruit.
तो हमारे प्रयासों का यह फल होता है.
You feel calm.
तो हम स्थिर महसूस करते हैं शांत महसूस करते हैं.
Yes, you feel no disturbance.
तो यानी हम ये अनुभव करते हैं कि कोई विचलितता नहीं है वहां पर.
There are two aspects to this.
तो इसको भी दो पहलू है.
There's kaya pasati.
ये kaya pasati है.
And चित्त pasati.
और चित्त pasati है.
So kaya pasati is the feeling of great relaxation and stillness in your body.
यानी ये काया पसधि जो है वो एक तरह से तनाव मुक्ति है और
स्टिलनेस
स्थिरता है. काया पसधि है.
काया पसधि. या सो समटाइम्स यू गेट दिस आफ्टर मेडिटेशन.
यानी कभी कभी हम ध्यान के बाद इसको अनुभव करते हैं.
Of course you get it in meditation too.
और ये ध्यान में भी ऐसे होता है.
But you're not more likely to notice it after meditation.
यानी इसको हम ध्यान के बाद भी देख सकते हैं.
You don't feel like moving.
हमें ऐसे लगता है कि अभी कोई हलचल नहीं करनी चाहिए.
Your body just feels completely relaxed.
हम ऐसा अनुभव करते हैं कि अपना जो शरीर है पूरी तरह तनाव मुक्त है.
There's no motivation in your body, as it were, to move. All the tension has gone.
सभी प्रकार के जो तनाव है वो चले गए हैं.
And yes, you feel very, very comfortable.
और हम एकदम आरामदायी अनुभव करते हैं.
And a very, very beautiful feeling, even at just this level of kaya.
तो ये बहुत ही सुंदर ऐसा अनुभव होता है, भले ही वो काया में क्यों ना हो.
But of course, that has a deeper aspect.
लेकिन इसका कुछ गहरा भी एक पहलू है.
That is the calmness of the mind.
और चित्त की स्थिरता कहेंगे.
I remember a very, very beautiful description that Bhante has of one of his main teachers.
और भंते जी के एक गुरु ने इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या की है.
And his one of his main teachers was Dujan Rinpoche.
और दुजान रिंपोचे जो उनके जो मुख्य गुरु है.
Who is one of the leading Tibetan gurus of the 20th century.
यानी 20वीं शताब्दी में जो तिब्बतन जो परंपरा है उसको जो नेतृत्व कर रहे थे उनमें से वो एक है.
And in Bhante's memoirs, he describes seeing Dujan Rinpoche for the first time.
और भंते जी अपने यादों में ऐसा कहते हैं जब उन्होंने पहली बार दुजा रिंपोचे को देखा था.
And Rinpoche was performing a bhumi puja for a new gompa, new temple.
और रिंपोचे जो है वो एक नया मंदिर के निर्माण की भूमि पूजन कर रहे थे.
I'm sure Suvajra knows the temple in Kalimpong.
और सुभद्रा जी इसे जानते हैं कि कैलिमपोंग में वो जो विहार है कहाँ है.
So before the earth was cut, Rinpoche had to perform a ceremony to prepare it, as it were.
तो जब उस जमीन को थोड़ा सा खोदा गया तो रिंपोचे जो थे खोदने से पहले वो कुछ तैयारी कर रहे थे.
And apparently part of what he was doing was asking all the little creatures to go.
वो करने से पहले उन्होंने वो ऐसा कहा कि जो छोटे छोटे जो कीड़े वीड़े हैं वो भी वहां से चले जाएं.
All the ants and all the worms and so forth.
तो जो जो चुटिया है और छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी.
So when they started to dig the earth, they didn't kill any little creatures.
तो जब वो भूमि को खोदना शुरू करेंगे तो एक भी छोटा सा जो जीव जो है वो मारा न जाए.
And Bhante said that the builders reported afterwards they did not find any little creatures.
और बिल्डर ने कहा था कि यानी जब पूरा बनाया गया तो एक छोटा सा भी कीड़ा वहां पर नहीं देखा था उन्होंने.
I don't know, that's what Bhante said, they said.
मुझे पता नहीं कि फिर उन्होंने जो कहा वो भंते कह रहे.
Anyway, that's not my main point.
ये मेरा महत्व का मुद्दा नहीं है.
So he went to this Bhumi Puja.
तो भंते जी वहां उस भूमि पूजा में गए थे.
And at one point, Rinpoche was standing there, just standing there.
तो एक ऐसा मौका था जहां पर रिंपोचे जो थे वो खड़े रह गए.
He had to do some action, I don't know what it was, but he was just standing.
और वो किस पोस्चर में खड़े थे पता नहीं लेकिन वो खड़े हो गए.
And he just stood for quite a long time.
और वो बहुत देर तक वहां खड़े रहे.
And Bhante said that he had a very, very strong impression.
और भंते जी कहते हैं कि ये बहुत ही मजबूत ऐसी प्रभावकारी बात थी.
He said, first of all, it was complete stillness of his body.
बहुत ही स्थिरता से वो वहां पर खड़े थे.
But he said that it was not just as if his body was still.
ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ उनका शरीर ऐसी स्थिरता से खड़ा है.
He said it was as if there was an absolute stillness of his mind.
और उनकी मन की भी यानी वो जैसे पूरे मन से वो वहां से स्थिर है.
It was just like the ocean when all the wind has died away and it just becomes completely still.
और ये यानी वो सागर की तरह ही है जैसे यानी सभी यानी हवा जब रुक जाती है पूरी तरह और वो जैसे स्थिर दिखता है.
And he had the impression that Rinpoche was still right to the depths of his being.
रिंपोचे जो थे वो वहां पर बिल्कुल डेस्क
उनके अस्तित्व की गहराई से
वहां पर स्थिर थे एकदम.
And he said that yes, it was the stillness of a mind that was completely at peace with itself.
तो मन के यानी संपूर्ण शांति के साथ वो यानी स्थिर वहां पर खड़े थे.
And completely at peace with the world.
और यानी आजू बाजू में जो कुछ भी है उसे भी वह यानी उसे भी परे शांत थे एकदम.
Well, when I read those words, I thought to myself, I want to be like that.
जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं इस तरह होना चाहिए.
And that's, well, it's way beyond even kaya and chitta. pasati.
और काया पसद्धि और चित्त पसद्धि जो है इससे परे गए.
But it gives us at least perhaps an image in our minds of what it might mean.
यानी ये कम से कम हमारे मन में कल्पना तो आती है कि कैसे होना चाहिए.
In a way, it's to do with upekkha.
एक अर्थ से यह उपेक्षा है.
But it illustrates my point.
लेकिन यानी मेरा मुद्दा इस तरह से.
And presumably we've all experienced this at times.
और कभी कभी हम इसे अनुभव करते हैं.
Just a little bit.
थोड़ा क्यों ना.
You just feel completely at peace.
और हम एकदम स्थिरता में शांति में होते हैं.
When you're doing the mindfulness of breathing in the fourth stage, you're deliberately calming yourself down.
जब हम आनापान सति के चौथी पायरी में होते हैं तो हम जानबूझकर इस स्थिरता का प्रयास करते हैं.
You don't need to think of it like that, but that's effectively what's happening.
यानी इसके बारे में हम सोचते नहीं लेकिन ऐसे ये होना चाहिए.
To be that focused on your breath, the whole body has to calm.
जब हम उस स्पर्श बिंदु की ओर देखते हैं तो हमारा पूरा जो शरीर है वो शांत हो जाता है, स्थिर होता है.
So yes, we can deliberately calm ourselves.
तो हम सोच समझकर स्थिरता को लाते हैं.
Actually, that's what we're doing in Qigong.
और यही बात हम Qigong में करते हैं.
When we're just standing like that, we're trying to completely calm our bodies.
जब हम सिर्फ खड़े रहते हैं तो जानबूझकर ये प्रयास करते हैं कि जो शरीर है वो स्थिर हो जाए.
And when you're standing there, you can notice little knots and little tensions, yeah?
जब हम इस तरह खड़े रहते हैं तो छोटे से भी तनाव जो है वो हम जानने लगते हैं.
So while you're standing there, you're actually looking at your body to see where there is lack of pasati.
तो जब हम इस तरह खड़े रहते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहां पसद्धि की कमी कहां है.
So you're even in Qigong, you're using sati, dhammavichaya, virya to get pasati.
तो जब हम चिकुंग करते हैं तभी हम इसे देख सकते हैं कि सती धम्म विचय और वीर्य को.
And I think you do something similar in yoga too.
और इसी की तरह हम योगा में करते हैं.
And certainly in shavasana at the end, yeah?
और विशेषता शवासन जो आखिर में किया जाता है.
But yes, in the context of the bodhyangas, it's something deeper and fuller.
और बोध्यांग के अर्थ से ये बहुत ही कुछ और भी गहराई में और पूर्णता की बात है.
And it goes deep into the mind.
और हमारे मन की गहराई से संबंधित है.
And of course it's exact opposite of udaccha kukuccha.
और ये उदच्च कुकच्च की विरोधी भावना है.
उदच्च कुकच्च is a tension in the body, tension in the mind.
उदच्च कुकच्च ऐसा है कि हमारे शरीर में कुछ तनाव होता है और हमारे मन में भी कुछ तनाव होता है.
And I think one of the things we need to do is become aware when these tensions arise.
जब इस तरह की बातें निर्माण होती है तो हमने जागरूक होना चाहिए.
You can see some people carry tension all the time.
हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनाव को लेके चलते हैं.
They're sort of excited or anxious all the time.
वो बहुत ही हमेशा उत्तेजित नजर आते हैं.
There's no stillness in their bodies, no stillness in their minds.
कोई स्थिरता उनके शरीर में और मन में नजर नहीं आती है.
And the result of the practice of smriti and its deepening aspects is this complete stillness.
और जब हम सती का सराव करते हैं और जब गहराई में जाते हैं तो ये पूर्ण स्थिरता आती है.
So, I've missed one, haven't I? Oh dear. I've jumped the gun.
तो एक बात रहेगी कि एकदम आगे चलेंगे.
So we haven't quite got to pasati yet.
तो अभी ये पसदी अभी तक हमने नहीं पाई है.
And we've still got piti.
उसके पहले प्रीति होती है.
So we'll have to go back to virya.
फिर से वीर्य की तरफ आते हैं.
This is Subhuti's lack of mindfulness.
Yes.
Publicly lack mindfulness. So virya, you're making a strong effort.
जब वीर्य मतलब जो बहुत ही भरकस से प्रयास करते हैं हम.
And that effort is unifying you.
और ये जो प्रयास है ये हमें और क्या कहते एक जगह एकता लाते हैं, एक जगह लाते हैं.
All your energies are coming together.
हमारी जो पूरी शक्ति है वो एकाग्र होने लगती है.
And all those tensions within you are beginning to be released.
और जो भी कुछ भी तनाव हमारे अंदर है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगते हैं.
And that's partly why on a retreat like this some deep things come up.
तो यानी इसीलिए हमारे शिविर में कुछ जो बहुत गहरी बातें हैं वो ऊपर आती है.
Memories come from the past.
भूतकाल की जो यादें हैं वो ऊपर आती है.
Even feelings in the body come up from the past.
शरीर के प्रति की जो वेदनाएं जो भूतकाल की है वो भी ऊपर आती है.
Sometimes it can be quite difficult in a situation like this.
इस तरह की परिस्थिति में कभी कभी यह बहुत कठिन हो जाती है.
Because energies that have been long held down come up.
बहुत दिनों से हमने जो ये शक्ति है इसे अंदर जो दबा के रखा है वो रखी है वो ऊपर आने लगती है.
But if you can remain mindful, they're released.
जब हम जागरूक हो जाते हैं तो वह मुक्त होने लगती है.
And you may get increasingly rushes of energy flowing through your body.
तो ये जो शक्ति है जो क्या बोलते हैं घाई गर्दी से बाहर आ रही है ऐसा कुछ होता है.
And these can be intensely pleasurable.
और ये बहुत ही अंदर से सुखदायी होती है.
This is piti or priti.
और यह प्रीति पीती है या प्रीति है.
This is the energies that are buried in your mind releasing themselves.
जो हमारे मन में जो दबी हुई जो शक्ति है वो मुक्त हो रही है.
It's as if our energies are locked up.
यानी हमारी जो शक्ति है जैसे कि यानी अंदर उसको यानी ताला लगा कर रखा हुआ है.
Often they're locked in the past.
और भूतकाल में इस तरह से उसे बंद किया है.
And when you are really mindful, they're released.
और जब हम जागरूक हो जाते हैं तो वह मुक्त होने लगती है.
When you are making an effort to develop skillful states, they're released.
जब हम कुशलता के लिए प्रयास करने लगते हैं तो वह मुक्त होने लगता है.
This can be, as I say, it's intensely pleasurable.
और यह बहुत ही अंदर से हमें सुख देने वाली होती है.
Sometimes it can be quite strange.
और कुछ कुछ बार यह बहुत ही विचित्र होता है.
It's as if there's a mixture of pain and pleasure.
तो ये सुख और दुख का ये संयोग होता है.
You can remember something from the past that's painful.
हम मैंने ये जानते हैं कि हमारा जो भूतकाल है वो दुखद है.
But there's a sort of pleasure as that's released.
और ये साथ ही में आनंद भी होता है कि वो मुक्त हो रहा है अभी.
So most of the time we just live on the surface of our minds.
यानी बहुत सारी बार हम अपने मन के यानी ऊपरी तौर पर रहते हैं.
And there's a lot of energy locked up in our bodies, locked up in our minds.
और बहुत सारी जो शक्ति है हमारे शरीर के भीतर और मन के भीतर भी यानी बंद करके रखी होती है.
But as we make an effort to discriminate skillful from unskillful, that energy is released.
और जब हम यानी कुशल और अकुशलों में अलग अलग करके कार्य करने लगते हैं तब यह शक्ति जो है मुक्त होने लगती है.
That's why, you know, sometimes tears will come.
और इसीलिए कभी कभी आंसू चले आते हैं.
And you know, sometimes they come in the middle of a meditation.
और कभी कभी ध्यान के मध्य में ऐसा कुछ होता है.
No need to comfort somebody when that's happening.
ऐसे समय किसी ने वहां जाकर कुछ करना नहीं है.
You just carry on with your meditation.
आप अपना ध्यान करते रहना चाहिए.
It's just something coming up in them that's at the moment bringing tears.
और कुछ तो भी हमारे साथ होता है इसलिए हमारे आंसू निकल आए.
If they need some help, they'll ask for it.
अगर उनको मदद चाहिए तो वो पूछेंगे किसी से.
But yes, we shouldn't be like a whole lot of mother hens coming clucking.
तो हमने इस तरह ने माँ का हाथ जैसे होता है वैसे तुरंत आकर करते आंसू पोछने का काम नहीं करना है.
Just let it come, let it go.
ऐसे आने दीजिए और जाने दीजिए.
If somebody needs help, let them ask for it.
जब अगर उनको सहायता है तो उनको पूछने दीजिए.
So yes, all these things will come.
तो इस तरह की जो बातें हैं वो आएगी.
It's not necessarily a bad thing.
और ये कोई ये जरूरी नहीं कि वो कोई बुरी बात होगी.
Sooner or later, PT dies away.
और कुछ समय के बाद PT चली जाती है, समाप्त हो जाती है, शांत होती है.
Because all the energy has been released.
क्योंकि सभी जो शक्ति हमारे अंदर दबी हुई है वो मुक्त हो जाती है.
And there's just pasadi.
और फिर pasadi आती है.
So we're back.
अभी फिर से हम pasadi की तरफ आए.
And we remember Dujong Rinpoche.
और हमें Dujong Rinpoche जो है उनको याद कीजिए.
So pasadi becomes very very deep, very very strong.
पसद्धि जो है वो बहुत ही गहरी है और बहुत ही मजबूत है.
All the energies become completely concentrated.
हमारी जो पूरी जो शक्ति है वो पूरी तरह एकाग्र हो जाती है.
And we start to rise into dhyana.
तो हम ध्यान में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं.
This of course is samadhi.
और इसी से समाधि आती है.
An intense state of concentration of the energies.
तो एकाग्र जो शक्ति है वो बहुत ही यानी ऐसी शक्ति है एकाग्रता की.
But it's very natural.
लेकिन ये बहुत ही नैसर्गिक है.
It feels very comfortable.
यह यानी हमें हम आरामदायी अनुभव करते हैं.
There's no sense of strain.
Strain. यानी कोई तनाव नहीं है.
You're not going like that.
इस तरह से जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है.
You just feel completely at ease, but all your energies are poised.
यानी हम
पूरी तरह आराम से है और सारी शक्तियां जो है प्रवाहित हो रही है.
And that leads you to the highest state of all.
और ये जो बात है ये हमें और उच्च मनोअवस्थाओं की ओर ले जाती है.
That samadhi is to some extent based upon the efforts that you've made before.
यानी ये समाधि की ऐसी अवस्था है कि हमने पहले जो कुछ भी प्रयास किया है इसका ये परिणाम है.
You're poised there.
यानी हम अभी वहां एकाग्र हैं.
But you're only poised there so long as you maintain the efforts that underlie it.
हम वहां एकाग्र इसलिए है क्योंकि अभी इसके पहले जो हमने जो कुछ भी प्रयास किए थे उसका यह परिणाम है.
But with the next step, you need no effort.
उसके आगे की जो पायरी है उसके लिए हमें अभी कुछ प्रयासों की जरूरत नहीं है.
Your mind becomes completely free from all attachment.
सभी प्रकार की आसक्ति से अभी हमारा मन मुक्त हो गया है.
You can't be attached to anything.
हम किसी चीज से आसक्त हो नहीं सकते हैं.
You recognize there's nothing to be attached to.
यानी हम ये जानते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम आसक्त हो सकते हैं.
So you experience upekkha.
तो हम उपेक्षा को अनुभव करते हैं.
Here upekkha isn't just fourth dhyana.
यहाँ उपेक्षा केवल चौथे ध्यान की अवस्था नहीं है.
It's beyond that. It's entering into the transcendental.
ये उससे परे है. एक अर्थ से लोकोत्तर है.
It's dwelling without any need for anything in the world.
यानी ये जो दुनिया में जो द्वैत भाव है उससे वो परे गई है.
Nothing can touch you.
कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्पर्श कर सकती.
Nothing can disturb you.
कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो विचलित कर सकती.
It is that state that Bhante described Dujon Rinpoche as experiencing.
Yes. Bhante ji ne yahi baat yani Dujon Rinpoche jo hai unke sandarbh mein kahi hai.
You're just free.
हम केवल मुक्त होते हैं.
And whatever happens, you don't react.
जो कुछ भी होता है हम उसको प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं.
You just do what is necessary to benefit the situation.
हम वही चीज करते हैं जो परिस्थिति को फायदा निर्माण कर देगी.
So yes, this consists in a final letting go.
ये वो अंतिम ऐसी बात है जिसे हम जाने देते हैं.
Of course, you go deeper and deeper.
जाहिर है कि हम और भी गहराई में जाते रहते हैं.
Upekkha itself is deepened.
उपेक्षा जो है वो स्वयं बहुत ही गहराई में.
But what it's deepened into, we don't really need to know.
और उसके भी और गहराई में क्या है ये सचमुच जानने की जरूरत नहीं है.
Perhaps we can't know.
और सचमुच में है कि हम जानते ही नहीं है.
But we need to learn to let go.
लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि इसे जाने देना चाहिए.
That's what we're doing in the six element practice.
और यही बात हम छह धातुओं के ध्यान में करते हैं.
You could say we're experiencing this kind of upekkha at least to some extent.
और इस तरह के ध्यान में उपेक्षा का जो अनुभव है थोड़ी मात्रा में क्यों न हमें होता है.
We're experiencing the mind as really cannot be not possible to disturb.
ऐसा एक समय होता है कि हम देखते हैं कि अभी किसी भी चीज से मेरा मन विचलित होने वाला नहीं है.
At least for the purposes of the meditation, you realize it's not the body.
और ध्यान का जो उद्देश्य है हम ये जानते हैं कि यह शरीर से संबंधित नहीं है.
So you've let go of attachment.
तो हम जो हमारी आसक्तियां हैं उसे जाने देते हैं.
So you experience this very intense, this very beautiful state of letting go.
तो ये बहुत ही गहराई में गई हुई और सुंदर ऐसी अवस्था है जाने देने की अनासक्त रहने की.
So these seven factors you already experience.
ये जो सात अंग है इसको हमने कुछ हद तक अनुभव किया है.
While I was speaking, I could see that you recognized what I was talking about.
यानी मैं ये जानता हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं.
They're not talking about some other planet.
यानी किसी दूसरे ग्रह के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ.
That they're actually part of our experience now.
ये हमारे अनुभव का एक हिस्सा है.
But we need to develop them much, much more deeply.
लेकिन और भी गहराई में हमें इसे विकसित करना है.
And when we develop them very deeply, enlightenment naturally arises.
जब हम इसे बहुत गहराई में जाकर विकसित करेंगे, तो बहुत ही स्वभावतः निसर्गतः बोधि चली आएगी.
Because each anga arises naturally out of the preceding one.
क्योंकि ये एक के बाद दूसरा यह बहुत ही निसर्गतः से यह अंग विकसित होता है.
It's a bit like a flower.
ये एक फूल की तरह है.
The seed naturally sends out a shoot.
जो बीज होती है वह पौधे में रूपांतरित होती है.
The shoot naturally sends out leaves.
और जो पौधा होता है वो पत्तों को जन्म देता है.
It naturally rises up to the sun.
और वो सूरज की तरफ आमुख होता है.
It naturally forms a bud.
वो बहुत ही निसर्गतः कली खिलती है.
That bud naturally opens into a flower.
और ये जो कली है वो बहुत ही निसर्गतः खिलने लगती है.
So these are the stages of our own flowering.
तो यह हमारी अपने हमारे अंदर की जो फूल खिलने की प्रक्रिया है.
So what we're doing is cultivating the bodhyangas.
तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो बोध्यांग है उसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं.
We've already done that to some extent.
हमने कुछ मात्रा में इसको किया है.
But we do it more and more and more.
लेकिन हमने इसे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करना है.
And in doing that, we get rid of the hindrances.
और ऐसा करने से हम जो निवरण है उसको निकाल देंगे.
And the more we get rid of the hindrances, the more the bodhyangas will grow.
और जितने ज्यादा मात्रा में हम निवरणों को निकाल देंगे उतनी ज्यादा मात्रा में बोधांग विकसित होंगे.
And the more we develop the bodhyangas, the more the hindrances will go.
और जितने ज्यादा मात्रा में हम बोध्यांगों को विकसित करेंगे उतनी ज्यादा मात्रा में निवरण चले जाएंगे.
So we need to do a lot of work to develop the conditions for each of these to grow.
तो हमें इस परिस्थिति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि ये विकसित हो जाए.
So we need to develop the conditions for smriti.
तो हमने स्मृति को निर्माण होने के लिए परिस्थिति बनाना चाहिए.
Well, we've got those here.
और जो यहाँ है.
You need to try to create them as much as you can in your home life.
घर में जैसी होती है उसे कई ज्यादा मात्रा में हमने इसे स्मृति को बनाने के लिए वातावरण
में भी ये स्मृति जारी रखना चाहिए.
हाँ तो घर में भी इस तरह की स्मृति जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने की वहां बनी रहे.
And you need to develop the conditions for dhamma vichaya.
और धम्म विचय करने के लिए भी परिस्थिति को हमने बनाना चाहिए.
You need to study the dhamma.
इसके धम्म का अभ्यास करना
And
चाहिए.
Study it regularly.
और नियमित धम्म अभ्यास करना है.
For instance, I suggest that you go through this text again and again.
तो मैं इन्हें सुझाव देना चाहूंगा कि यह जो सूत्र है इसको आपने बार बार देखना चाहिए.
You can use my commentary on it.
आप मेरी जो इसके ऊपर की जो टीका है उसे देख सकते हैं.
You can use Bhante's commentary on it.
आप भंते की जो टीका है इसे भी देख सकते हैं.
That's in English.
तो वह अंग्रेजी में है.
And it's a very good commentary that's been published by our own Windhorse Publications by Bhikkhu Analayo.
तो भिक्खु अनालायो जो है उनकी भी एक अच्छी जो टीका है जो विनोस पब्लिकेशन ने प्रकाशित की है.
He visited the Mahavihara, stayed the Mahavihara in 1994. Some of you may have known him. Yeah.
तो ये बनते अनालायो जो है वो महाविहार में 1994 में.
It's a very, very, very good book. Yeah.
बहुत ही अच्छी किताब है वो.
Then yes, you need to study the Dhamma so that you can apply it to your own experience.
यानी धम्म का अभ्यास करना चाहिए ताकि उसको हम अपने जीवन में उतार सके.
And virya, well, you just need to make an effort all the time.
और वीर्य जो है हमने हर पल प्रयास करते रहना चाहिए.
In meditation, priti will come.
जब हम ध्यान में प्रीति चली आएगी फिर
prashabdi will come.
Prashabdi चली आएगी.
And samadhi and upeksha.
तो समाधि और उपेक्षा.
So you need to work to develop all these factors.
तो हमें ये जरूरत है कि ये जो सभी अंग है उसको विकसित करें.
In every aspect of your life.
हमारे जीवन के सभी अंगों में.
And then bodhi will naturally arise.
और फिर बोधि जो है वो निसर्गतः ही खिलाएगी.